अध्याय दो, कबीर पुनर्विचार का समय। कबीर का व्यवस्थित अध्ययन आरंभ हुए 100 वर्ष से अधिक हो रहे हैं। इस प्रसंग की अच्छी समीक्षा रामेश्वर मिश्र ने अपने निबंध कबीर के मूल्यांकन में शांतिनिकेतन का योगदान में की है। शांतिनिकेतन परिसर पर अध्ययन की पृष्ठभूमि का भी उन्होंने सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है। यह समूचा क्रम कुछ यूं बनता है। 1880 ईस्वी के आसपास प्रकाशित पंडित रामकुमार विद्यारत्न का बंगला में लिखित कबीरेर संक्षिप्त जीवन चरित्र गुजरात के एक आयरिश चर्च में पास्टर पंडित वालजी भाई का गुजराती में लिखित कबीर चरित्र, मुंगेर के रेवरेंड प्रेमचंद का बीजक, बिशप वेस्टकट का कबीर एंड द कबीर पांच, आचार्य क्षितिज मोहन सेन का कबीर, रविंद्रनाथ का प्रसिद्ध अनुवाद 100 पोएम्स ऑफ कबीर, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कबीर वचनावली, रेवरेंड अहमद शाह का द बीजक ऑफ कबीर, रेवरेंड एफ ई के का कबीर एंड हिज फॉलोअर्स। इस संक्षिप्त सूची से प्रकट होता है कि बंगला तथा हिंदी लेखकों के अध्ययन ईसाई मिशनरियों के कबीर विषयक कार्य के गहरे दबाव के बीच हुए हैं। आचार्य चित्तमोहन सेन के अध्ययन और रविंद्रनाथ के अनुवाद के बीच कालक्रम और परिसर दोनों का संबंध भी दृष्टव्य है। इस लंबी पृष्ठभूमि के बाद हिंदी का अपना प्रसिद्ध अध्ययन आता है, अजय प्रसाद द्विवेदी का कबीर। कहना न होगा चित्तमोहन सेन तथा रविंद्रनाथ के कार्य की यह अगली कड़ी है। इस दृष्टि से रामेश्वर मिश्र ने कबीर अध्ययन में शांतिनिकेतन की भूमिका को सही रेखांकित किया है। यूं इस शताधिक वर्ष पुराने अध्ययन क्रम पर कुछ विचार अपेक्षित है। इस अपेक्षा के पीछे महज काल प्रवाह नहीं, कुछ अन्य ऐतिहासिक तथा वैदेशिक कारण भी लक्षित किए जा सकते हैं। कहना न होगा शांतिनिकेतन परिसर पर प्रवर्तित अध्ययन पर सर्वाधिक प्रभाव रविंद्रनाथ के अपने कवि व्यक्तित्व, उनके कबीर अनुवाद और इस अनुवाद के आसपास रही 1913 में उन्हें मिले नोबेल पुरस्कार का है। अनुवाद में सहायक बनी एवेलिन अंडरहिल, जिनकी विशेष रुचि रहस्यवाद और संत काव्य में थी। कबीर के 100 पद का यह अंग्रेजी अनुवाद 100 पोएम्स ऑफ कबीर 1914 में प्रकाशित होता है। इसके पूर्व एज्रा पाउंड द्वारा 10 पदों का अनुवाद प्रसिद्ध पत्रिका द मॉडर्न रिव्यू में के जून 1913 के अंक में छप चुका था, जहां उनके सहयोगी कालीमोहन घोष ने घोष थे। 1913 जैसा कहा गया रविंद्रनाथ के नोबेल पुरस्कार का भी वर्ष है। एक रोचक तथ्य यह है कि रविंद्रनाथ ने अपने अनुवाद की भूमिका में अपना नाम नहीं दिया है, वहाँ सिर्फ उनकी सहयोगी एवेलिन अंडरहिल का नाम है। यहाँ भारतीय साहित्य के प्रति अंग्रेजी वैदुष्य का दृष्टिकोण क्या कैसा रहा है, इसे समझने के लिए कुछ संकेत उपयोगी होगा। ब्रिटिश विद्वत्ता परंपरा में हिंदू धर्म और भारतीय साहित्य के प्रति कभी प्रच्छन्न और कभी प्रकट विरोध विद्वेष भाव प्रायः रहा है, जबकि रचना परंपरा में अधिकतर एक बुनियादी सहानुभूति का भाव है। इल्म और इश्क की दुनिया कुछ अलग अलग हो तो यह बात समझ में आती है। कुछ ऐसी ही दुविधा कवि मन में रही होगी, जिसके कारण रविंद्रनाथ अपने काव्यानुवाद की वैदुष्यपूर्ण भूमिका में अपने को भागीदार नहीं बनाते। यूँ कबीर के संबंध में यह द्वैत भाव बड़े रोचक ढंग से उभरता है। रविंद्रनाथ टैगोर के साथ साथ मध्यकालीन रहस्य भावना विशेषतः कबीर को लेकर अंग्रेजी साहित्य जगत में रुचि एक बार की बढ़ी थी। पाउंड और टैगोर के अनुवादों का उल्लेख ऊपर हो चुका है। पाउंड आधुनिक अंग्रेजी के सबसे बड़े कवि टीएस एलियट के गुरु स्थानीय रहे हैं, जिनके द वेस्टलैंड में आरंभ से अंत तक उपनिषद और बौद्ध चिंतन धारा अनुसृत रही है। पतंजलि योग में कवि की गहरी रुचि थी, इसके प्रमाण उनके पत्रों में दृष्टव्य है। ऐसे अनेक संदर्भ कवि येट्स, वाल्ट व्हिटमैन और कथाकार सोमरसेट मॉम की रचनाओं में मिलेंगे। यह भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ उपलब्धियां आधुनिक अंग्रेजी साहित्य विशेषतः कविता रचना में कैसी भूमिका निभा रही थी यह देखने की बात है। अंग्रेजी कविता के भारतीय भाषाओं पर प्रभाव को तो दर्जनों ग्रंथों में शोध का विषय बनाया गया है, पर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की आधुनिक यूरोपीय पुनर्जागरण में भूमिका अभी बहुत कुछ विस्मृत पड़ी है। प्राच्य पुनर्जागरण के आरंभ काल पर संस्कृत के संदर्भ बनाते हुए कुछ काम हुआ है। एक फ्रेंच विद्वान रेमंड श्वाब द्वारा द ओरिएंटल रेनेश मूल 1950 आधुनिक काल में एलियट के काव्य पर भी इस दृष्टि से कुछ अध्ययन हुआ है। यहाँ भारतीय विद्वानों का योगदान नगण्य है। जहाँ तक कबीर का संदर्भ भारतीय परिदृश्य पर है, स्वयं रविन्द्रनाथ की गीतांजलि पर कबीर के प्रभाव का दस्तावेजी साक्ष्य गीतांजलि पांडुलिपि से रामेश्वर मिश्र ने एक दशक पूर्व प्रस्तुत किया था, जिसका विस्तृत विवेचन परीक्षण अविशेष है। यहाँ शोधकर्ता ने चित्रों के साथ दिखाया है कि मूल बंगला गीतांजलि के गीत जिस कॉपी में रविन्द्रनाथ ने लिखे हैं, वहाँ उन्हीं पृष्ठों पर कवि ने अपने हस्तलिपि में कबीर तथा कुछ अन्य हिंदी कवियों के दोहे लिख रखे हैं। रविन्द्रनाथ के कबीर अनुवाद में जैसा कहा गया, भूमिका कवि ने नहीं लिखी, अंग्रेजी सहयोगी एवलिन अंडरहिल ने लिखी है अपने सामान्य पूर्वग्रहों के साथ। भूमिका का सारांश यह है कि कबीर का जन्म निश्चय एक मुसलमान परिवार में हुआ। उनके काव्य संसार संस्कार बनने में सूफी संप्रदाय का बड़ा योगदान रहा और हिंदू धर्म की तो उन्होंने बराबर आलोचना की। यानी सारांश का सारांश यह कि कबीर के काव्य सृजन में हिंदू परंपरा का कोई रचनात्मक योगदान नहीं कहना न होगा। स्वयं साफ कबीर की यह भूमिका रविंद्रनाथ द्वारा लिखित तो नहीं, पर किसी कदर अनुमोदित अंग्रेजी और हिंदी में कबीर अधिवक्ताओं के लिए अधिकतर मार्गदर्शक रही है। हिंदी शोधकर्ताओं ने जहाँ कुछ नए तथ्य और पाठ प्रकाशित किए हैं, उनकी अनदेखी ही हुई है। यहाँ पहले इस भूमिका की मुख्य मान्यताओं का विवेचन प्रासंगिक होगा। सूफी प्रभाव को की बात पहले। आलोचना जगत में यह सुविदित है कि सूफी परंपरा प्रेमास्पद को परम तत्व के रूप में देखती है और साधक को प्रेमी के रूप में। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध कृति पद्मावत में पद्मावती परम तत्व का रूप है और रत्नसेन पहले प्रेमी फिर पति का। भारतीय परंपरा इसके विपरीत है। यहाँ आत्मा यानी कि साधक अपने को पत्नी प्रेमिका रूप में देखता है, परमात्मा पति रूप है। कबीर इस भारतीय प्रतीक विधान को ही अपनाते हैं। हरि मोरा पियो मैं हरि की बहुरिया, या कि दुल्हन गाम हो मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। कोई भी रचनाकार अपने लिए वैचारिक पोषण विविध सांस्कृतिक दार्शनिक परंपराओं से लेता है, यह उसकी व्यापक दृष्टि का कारण और प्रमाण दोनों है। पर मुख्य बात तो उसकी रचना विधान की है, जहाँ यह समझना होता है कि उसकी अपनी रचना युक्तियाँ क्या है। कबीर की रचना युक्तियाँ यहाँ स्पष्ट ही भारतीय परंपरा के अनुकूल है, न कि सूफी परंपरा की। फिर उक्त आलोचना सरणी में यह बात भुला दी जाती है कि सूफी विचार परंपरा स्वयं भारतीय अद्वैत दर्शन की कितनी ऋणी है। यहाँ रामबिलास शर्मा का रेखांकन बहुत स्पष्ट है। इनोट कामा, भक्ति और उसका प्रेम तत्व कबीर ने रामानंद से प्राप्त किया है। इनोट कामा, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, खंड 2, पृष्ठ 181। कबीर हिंदू भक्ति परंपरा में कितने डूबे हैं, इसका कुछ पता उनके पौराणिक चरित्रों के स्मरण से लग जाता है। जगह जगह वे प्रभु से अपने उद्धार का अनुरोध करते हैं और तब ठीक सूर तुलसी की तरह ही प्रहलाद, सुदामा, अजामिल, गज एवं गणिका जैसी लोक प्रचलित उद्धार कथाओं की याद दिलाते हैं। रामपद की कितनी आवृत्तियाँ हैं कबीर में, इसकी गणना न भी की जाए तो भी इतना दावा किया जा सकता है कि कबीर के बराबर का उतना ही कोई पाठ तुलसी में कहीं से उठा लिया जाए और दोनों को तुलना हो तो शायद कबीर में राम की आवृत्तियाँ तुलसी से कुछ अधिक ही होंगी। इस प्रसंग में कबीर की प्रसिद्ध उक्ति है, राम नाम का मरम है आना। ठीक इसी मुद्रा में आगे चलकर सुर तुलसी निर्गुण सगुण का झगड़ा निपटेते हैं। सुर सागर के आमुख में जैसे स्पष्ट कर दिया गया है, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब मन धावे, सब विधि अगम विचार हैं ताते सूर सगुण पद गावे। अर्थात सूर समझते हैं कि तत्वतः ब्रह्म का स्वरूप निर्गुण है, पर श्रोता पाठक की सुविधा के लिए वे सगुण लीला का गान कर रहे हैं। तुलसी की युक्ति और सूझबूझ की है वे निर्गुण सगुण में नहीं कछु भेदा कहते हुए बीच में राम नाम की मध्यस्थता रख देते हैं। कबीर में राम नाम का मर्म है आना, ठीक यही बात है। जो हिंदू भक्ति परंपरा से कबीर रचनात्मक रूप से सीधे जुड़े हुए हैं। कबीर जन्म से हिंदू थे या मुसलमान यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह भी नहीं है कि वे किस धर्म में मरे। अनेक मुसलमानों का योगदान हिंदी साहित्य के विकास में है, जैसे कि अनेक हिंदुओं का योगदान उर्दू साहित्य में है। भाषा साहित्य का किसी धर्म विशेष से अनिवार्य संबंध नहीं होता, संस्कृति से होता है, जिसे धर्म का सत कह सकते हैं। बहुत कुछ होम्योपैथी सिद्धांत के अनुसार संस्कृति के घोल में धर्म का तत्व जितना हल्का होता जाएगा, संस्कृति की प्रभावशीलता की मात्रा उतनी बढ़ती जाएगी। एक स्थिति में संस्कृति धर्म से प्रबलतर हो जाती है। दो उदाहरण हमारे सामने हैं। संस्कृति के अलगाव के कारण बांग्लादेश मुक्ति युद्ध लड़कर समधर्मी पाकिस्तान से अलग हो गया। दूसरी ओर इस्लाम में दीक्षित हो जाने पर भी इंडोनेशिया अपने पुराने हिंदू संस्कृति के प्रभावों को पूरे सम्मान के साथ बनाए हुए है। पुरुष स्त्री नामों से लेकर रामायण कथा के विविध रूप और चरित्र उनके जनजीवन में समाये हुए हैं। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक तथा चिंतक धीरेन्द्र वर्मा ने भाषा और धर्म के प्रसंग में एकदम ठीक सावधान किया है। यूनाइटेड कामा हिंदी के संबंध में एक भ्रम के निवारण की नितांत आवश्यकता है, वह यह कि हिंदी हिंदुओं की भाषा न होकर हिंदियों की भाषा है। यूनाइटेड कामा बंद। हिंदी साहित्य सम्मेलन के 27वें अधिवेशन शिमला के साहित्य परिषद 1938 के अध्यक्ष पद से दिया गया अभिभाषण। यूनाइटेड कामा बंद। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण यह है कि धार्मिक रूढ़ियों का जहां कबीर ने सर्वत्र जमकर खंडन किया, वहां सूक्ष्म धर्म चेतना उनके बराबर अंतर्व्याप्त रही। आत्मालोचन की बड़ी प्रखर परंपरा हिंदू मानस की विशेषता है। कबीर उसका शिष्टतम रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए कबीर को लाड़ने पुकारने के बावजूद किसी अन्य साहित्य या सांस्कृतिक परंपरा में यह साहस नहीं होता कि उन्हें हथियाने की कुछ भी कोशिश करें। कबीर का होना सिर्फ हिंदू परंपरा में ही संभव है। तब हिंदू निष्ठा एक ओर और धर्मांतरण का विरोध दूसरी ओर। कबीर के निम्नलिखित पद में अत्यंत प्रखर रूप में दृष्टव्य है। पूरा पद इस प्रकार है, काजी तय कवन कतेब मखानी, पढ़त पढ़त केते दिन बीते गति एको नहीं जानी, सकति स्नेह पकड़ी कर सुनति मैंने बदऊंगा भाई, जब रे खुदाई तुर्क मुही करता तव आप ही कटिके न जाई, सुनत कराई तुर्क जव होना तव औरति कऊ का कहिए, अर्ध शरीरी नारी न छूटे ताते हिंदू रहिए, हिंदू तुर्क कहाँ तय आए किन एहराह चलाई, दिल मही खोज देखी खोज दे भिष्टि कहाँ तय आई, छाड़ कतेब राम भज बौरे जुल्म करत है भारी, कबीर पकड़ी टेक राम की तुर्क रहे पचिहारी। कबीर ग्रंथावली संपादक पारसनाथ तिवारी 1961 पद संख्या 178। यह पद अन्य सभी प्रमुख कबीर पाठों में सुलभ है, जैसे गुरु ग्रंथ साहब, श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, माता प्रसाद गुप्त तथा ठाकुर जयदेव सिंह, वासुदेव सिंह द्वारा प्रस्तुत पाठ। कबीर जिस सहज भाव से यहाँ काजी को राम भजने की सलाह देते हैं और उसी मजबूती से राम नाम की टेक पकड़े हुए हैं, वैसी निर्भीक निष्ठा तुलसी को भी कुछ पीछे छोड़ देती है। इस पद के संदर्भ में कबीर को जन्मतः मुसलमान मानने वाले विद्वानों को इस अंतःसाक्ष का विचार करना होगा। जब रे खुदाई तुर्क मुही करता, कबीर मुसलमान पैदा हुए होते तो यह क्यों कहते? यदि खुदा ने मुझे तुर्क बनाया होता तो। फिर पद के उत्तरार्ध में कबीर धर्मांतरण का तीखा व्यंग्य करते हुए कहते हैं, सुनत कराए तुर्क जव होना, और अंत में निष्कर्ष देते हैं, कबीर पकड़ी टेक राम की तुर्क रहे पचिहारी। पुनर्विचार की अपेक्षा इनके संदर्भों में से उभरती है। राजनीतिक दासता और उपनिवेशवाद से मुक्त हुए हमें आधी सदी हो गई है और वैचारिक और वैदेशिक उपनिवेशवाद से मुक्त होना अविशेष है। उपनिवेशवाद के इस अपेक्षा सूक्ष्म रूप की मुख्य पहचान है कि देशी धर्म, रीति रिवाज, भाषाएं, संस्कार पिछड़े लगने लगते हैं। शासकों के धर्म, रीति रिवाज, भाषाएं, संस्कार अच्छे जान पड़ते हैं। उन्नति के उपकरण फारस या इंग्लैंड से आए लगते हैं। स्वदेश भारत महज अंधविश्वासों का देश रह जाता है। उपनिवेशवादी मानसिकता का असली और गहरा रूप यही है जिसने अन्य वैदेशिक क्षेत्रों के अतिरिक्त कबीर अध्ययन के स्वाधीन रूप में बाधाएं खड़ी की हैं। अपने समय में विदेशी सांस्कृतिक आधिपत्य का प्रतिवाद गोस्वामी तुलसीदास ने कैसे किया, इसका सशक्त आख्यान है निराला का काव्य तुलसीदास। इसे हिंदी जाति का एक महत्वपूर्ण रचनात्मक दस्तावेज कहा जा सकता है। उस दासता और इस स्वातंत्र को पहचान कर अपने विरासत का मूल्यांकन करने का अब समय है। स्पष्ट है इस मूल्यांकन का आधार बहुत कुछ वैसा ही रखना होगा जैसा कालिदास ने पुराने और नए के बीच का विवेक प्रस्तावित किया था। कबीर और सूफी प्रभाव तथा कबीर और हिंदू परंपरा के पक्षों को ऐसे निर्मल विवेक से व्याख्यायित किया जा सकता है। कबीर पर पुनर्विचार का एक अन्य कारण भी है। कबीर को हिंदी आलोचना के केंद्र में लाने का श्रेय हजर प्रसाद द्विवेदी को है। जनमन में तो वे अपने से थे, पर जिस पाठ के सारे आचार्य द्विवेदी ने अपनी कबीर आलोचना को विकसित किया वह पूरी तरह संदिग्ध है। यह पाठ जैसा स्वयं उन्होंने अपने ग्रंथ कबीर के परिशिष्ट में स्पष्ट किया है, आचार्य क्षितिमोहन सेन के स्रोत से आया है। क्षिति बाबू ने यह पाठ साधुओं की चिड़मों के बीच उनके मुख से सुनकर तैयार किया था। यह वही पाठ है जिसके आधार पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने कबीर के 100 पदों का अनुवाद किया था। स्पष्ट ही इस पाठ पर स्वयं रविंद्रनाथ का और उनके नोबेल सम्मान का प्रभाव मंडल छाया रहा। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में जब कोई प्रमाणिक पाठ सुलभ नहीं थे तो क्षिति बाबू के पाठ का कोई विकल्प यूँ भी नहीं था। फलतः कबीर संबंधी हिंदी आलोचना अधिकतर शांति निकेतन के सहारे चलती रही और इसके लिए हमें क्षिति बाबू तथा अन्य विद्वानों का आभार मानना चाहिए। पर इस बीच हिंदी के कई मान्य पाठ विज्ञानियों तथा संत साहित्य के विद्वानों ने कबीर के पाठ तैयार किए हैं और इस विषय का काफ़ी मंथन हुआ है। तब जरूरी है कि कबीर संबंधी विवेचन मूल्यांकन अधिकतम शुद्ध पाठ के आधार पर हो। यदि हिंदी आलोचना ऐसा नहीं करती तो एक ओर कबीर के प्रति अन्याय होता और दूसरी ओर उन कबीर विद्वानों के प्रति जिन्होंने बड़े परिश्रम और मनोयोग के साथ ये पाठ तैयार किए हैं। रविंद्रनाथ का अनुवाद इस पाठ समस्या से बहुत दूर तक भले प्रभावित न हो, उस अर्थ में कि वह तो अपनी प्रकृति में बहुत कुछ अनुवाद नहीं, रचना अनुवाद ट्रांसक्रिएशन है, समस्या आलोचकों के लिए है जिसे मूल पाठ के आधार पर व्याख्या विवेचन में प्रवृत्त होना है। प्रदूषण से बचाव गंगा यमुना का ही नहीं सरस्वती का भी होना है। अशुद्ध पाठ को छानना बीनना इस प्रदूषण से बचाव का एक कारगर उपाय है। क्षेपक एक प्रकार से मूल रचनाकार की विलोम जारत संतान है। विलोम इसलिए कि सामान्यतः रचनाकार पाठक में रचनाधान करता है, यहाँ उल्टे पाठक रचनाकार में अपना रचनाधान करता है। अब समय आ गया है यह देखने का कि कबीर के जो पद हम पढ़ते या गाते आ रहे हैं उसमें कितना अंश कबीर का है और कितना उनके प्रशंसकों का। हम प्रशंसकों के आत्म विलीनीकरण का सम्मान करते हैं, पर उससे कबीर पाठ का मान लेना रचनाकार के प्रति अन्याय होगा। इस साहित्यिक अन्याय का निराकरण आवश्यक है, तब विलोम जारज पाठों से बचना होगा। मैंने स्वयं अपने अध्ययन मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा के समय से डॉक्टर परशनाथ तिवारी के पाठ का प्रयोग किया है। कबीर ग्रंथावली हिंदी परिषद प्रकाशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1961। प्रस्तुत आलेख में दिए गए उद्धरण इसी पाठ के हैं और तदनुसार पद शाखे में संख्या का यथावश्यक निर्देश है। प्रसन्नता की बात है कि हिंदी आलोचना के क्षेत्र में इस विशिष्ट समस्या के प्रति सावधानी आई है। प्रसिद्ध आलोचक नंदकिशोर नवल ने अपने आलोचना त्रैमासिक कसौटी जनवरी मार्च 2000 के मुख्य संपादकीय में कबीर की वाणी एक निजी पाठ शीर्षक से उक्त समस्या का रोचक और उपयोगी विवेचन किया है। आत्मस्वीकार की मुद्रा में वे लिखते हैं, ये नोटेड कामा, धीरे धीरे जब कबीर की चर्चा नए सिरे से जोर पकड़ने लगी तो मैंने उन्हें संपूर्णता में पढ़ने का निश्चय किया। उसके लिए सर्वप्रथम कबीर वाणी के प्रामाणिक पाठ की समस्या सामने आई। द्विवेदी जी ने अपने पुस्तक में कबीर की जो कविताएं दी हैं उनकी प्रामाणिकता में तो उन्हीं को संदेह था, क्योंकि उन्होंने उसकी भूमिका में लिखा है कि उनमें से 100 कविताएं आचार्य चित्तमोहन सेन द्वारा संपादित कबीर के पद नामक उस पुस्तक से ली गई हैं, जो अपनी प्रामाणिकता के लिए किसी पोथी की मुखापेक्षिता नहीं रखती। कारण यह कि उसकी सारी कविताएं भक्तों से मुख से सुनकर संग्रह की गई हैं। शेष 156 कविताओं के स्रोत का द्विवेदी जी ने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। ऐसी स्थिति में कबीर की परिशिष्ट में दी गई कविताओं से मेरा हटना स्वाभाविक था, क्योंकि मैं कबीर के शोधकर्ता नहीं बल्कि आस्वादनकर्ता के दृष्टि से पढ़ना चाहता था। इसलिए मैंने ज़्यादा छानबीन नहीं की और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के अध्ययन के लिए चुना। इस संदर्भ में अपने लिए प्रमाणिक पाठ का चुनाव यूँ अब कबीर के हरवलोचक और सामान्य पाठक को भी करना होगा। गायक के लिए शायद वैसा जरूरी न हो, क्योंकि वहाँ शब्द से कहीं अधिक महत्व स्वर और सुर का है। पुनर्विचार प्रक्रिया आरंभ करते समय उचित होगा कि कबीर के कवि रूप को केंद्र में रखा जाए, जो कई तरह के विवादों के बीच आवृत्त सा हो गया है। उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में अपना आलेख कवि कबीर इसी दृष्टि से मैंने प्रस्तुत किया था। यहाँ कबीर की अनुभूति सघनता, उनकी विलक्षण काव्य युक्तियाँ, भाषा संस्कार के अनेक पक्षों और उनके निरंतर संगठन की ओर ध्यान देना होगा, जिससे किसी कदर प्रेरित होकर रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में कबीर प्रकरण को पूरा करते हुए लिखा था, नोटकामा, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। नोटकामा वन, प्रतिभा और नवोन्मेष के संबंध को उजागर करना ही यहाँ अभिष्ट है। बड़े कवि की एक पहचान यह कही जा सकती है कि वह विरोधी परिस्थितियों और मनस्थितियों के कितने युग्मों को परस्पर आमने सामने रखकर उनका अंकन करता है। यह विरोधी मनस्थितियों का चित्रण एक तरह से महाकाव्य के लंबे फैले चित्रण का कुशल, यद्यपि कि आत्मविश्वास की दृष्टि से कठिनतर विकल्प है। गणेश की पृथ्वी परिक्रमा जैसा, जिसे वे अपने भाई कार्तिकेय से पूरा कर लेते हैं, कबीर की चर्चा बहुत बार उनकी तीखी ऐंठ की मुद्रा के लिए होती है, जिसका प्रसिद्ध उदाहरण है, हम घर जा रहा आपना लिए मुराड़ा हाथ, अब घर जा लो तास का जो चले हमारे साथ, या कि जे तुम बावन बभनी जाया तव आन बाट हुई काहे न आया। तो दूसरी ओर ऐसी विनम्रता और अकिजनता है कि जिसके सामने तुलसी फीके पड़ जाए। सुपने हो बरराई कहे जेह मुख निकुसें राम, ताकय पग की पान ही मेरे तन कौ चाम। तुलसी जब कहते हैं भाय कुभाय अनख आलस हूँ, राम नाम मंगल दिशि दस हूँ, तो एक सार्वजनिक तथ्य का प्रकाश करते हैं, निजी अनुभूति की अभिव्यक्ति नहीं। ये परस्पर विरोधी मनस्थितियाँ क्रमशः एक दूसरे की पूरक होकर जीवन का समग्र चित्रण संभव करती हैं। यह जीवन का वैषम्य विरोध एक व्यापक स्तर पर जीवन का वैविध्य बन जाता है और महाकाव्य के समग्र संपूर्ण चित्रण का प्रतिरूप होता है। अपनी इस अंतःसंबद्धता के गुण से यह विधान मुक्तक काव्य की स्पष्टता नहीं, प्रबंध की समरसता के निकट आ जाता है। कहना न होगा कि कवि की अनुभूति सघनता इस अंतःसंबद्धता का विधायक कारण होती है। कबीर की काव्य युक्तियों में से कुछ का उल्लेख कवि के प्रतीक विधान के प्रसंग में हो चुका है। उनका प्रस्तुत विधान वे भले कूट छंद ही क्यों न हो, बराबर सामान्य जीवन क्रम से लिया दिखेगा, जिससे श्रोता पाठक के भावबोध में कहीं कोई अड़चन न हो। भक्ति निष्ठा के लिए दो अप्रस्तुत उनके यहाँ मिलेंगे, एक सत्य स्त्री का और दूसरे युद्ध में लड़ने वाले शूर का। इनकी आवृत्ति भक्ति के चरम समर्पण के प्रसंग में कुछ वैसे होती है जैसे तुलसी के यहाँ चातक और मीन। सुरातन के दोनों प्रकरण पद और साखी के इस अप्रस्तुत विधान से भरपूर है। अपने अंतिम साज श्रृंगार के साथ पूरी महिमा में सती और वैसे ही अस्त्र शस्त्रों से लैस शूर। सामान्य जन जीवन में आदित्य ये दोनों बिंब कबीर के लिए प्रेम भक्ति निष्ठा के प्रतिमान है। एक दो उदाहरण प्रस्तुत हैं अपने शब्द विधान और लयछंद में तेजस्विता लिए हुए। सुरा सही सराहिये लड़े धनी कह हेत, पुरिजा पुरिजा वहीं पर है तऊ न छाणे खेत, सती जरन को नीकसी चित धरी एक विवेक, तनमा न सौंपा पीव को अंतर रही नरेक। पौराणिक चरित्रों के साथ साथ हिंदू जीवन मूल्यों में आस्था कबीर के कवि व्यक्तित्व के केंद्र में है, जिस परंपरा के अनेक तत्वों के वे वैसे ही तीखे आलोचक भी हैं। मूल दृष्टि इस समूचे चयन में वह है कि जिसकी व्याख्या रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है मैं इस प्रकार की है। इनोटेड कामा। सारांश यह है कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषय के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा जो मूर्त और गोचर होंगे। जब तक भावों में सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा न हो सकेगा। नोट का बंद। यूं समग्रतः कबीर में एक बुनियादी निर्भीकता का स्वर सर्वत्र मिलता है, उनके रचना विधान में और चिंतन में। यह निर्भीकता जैसे उनके यहाँ एक सर्जनात्मक मूल्य धारण कर लेती है। इस रचनात्मक निर्भीकता का एक विशिष्ट उदाहरण कबीर के भाषिक विधान में दृष्टव्य है, कहना चाहिए श्रोतव्य है। कई प्रसंगों में इस चर्चा का अवसर हुआ है कि भाषिक शतरंग के एक सिरे पर कविता है तो दूसरे सिरे पर गाली, गाली के बाद भाषा का क्षेत्र चुक जाता है, मारपीट शुरू हो जाती है। इधर कविता जो भाषा का अधिकतम सृजनात्मक रूप है के पहले मंत्र रहता है, एक तरफ मंत्र दूसरी तरफ मारपीट, इनके बीच भाषिक प्रयोग के विविध रंग हैं। कबीर की विशिष्ट रचनात्मक क्षमता इस बात में है कि उन्होंने कविता और गाली की विरोधी सिरों को एक दूसरे से मिला दिया है। डांट फटकार और गाली को कविता में रूपांतरित कर देना यह कबीर की निर्भीक रचना विधान की ही उपलब्धि है। कबीर के पक्ष से बहुत बार कुछ क्षमा याचना की मुद्रा में कहा जाता है कि वे पढ़े लिखे तो थे नहीं और उनका भाषा ज्ञान अधकचरा था। जैसे ऐसी साधनहीनता के साथ कितना जितना कुछ वे कर सके उसी को बहुत करके मानना चाहिए। इस तर्क का क्रम रोचक प्रत्याख्यान हम अपने समय में स्वयं देख चुके हैं। आधुनिक काल के शीर्ष कवि निराला की व्यवस्थित शिक्षा नहीं के बराबर थी तथा हिंदी उन्होंने अपनी पत्नी के सानिध्य में और सरस्वती पत्रिका के प्रतियों से सीखी थी, जैसा कि उन्होंने गीतिका के समर्पण में बड़े भावपूर्ण ढंग से स्पष्ट किया है। तब कबीर और निराला में भाषा और संवेदना का जैसा वैविध्य है वैसा उनके समकालीनों में ढूंढ पाना कठिन है। निराला के कवि व्यक्तित्व से हम अब सुपरिचित हैं। कबीर के अन्य उपयोगों के बीच से उनके कवि व्यक्तित्व को फिर से एक बार निकालना होगा। उपर्युक्त कई बिंदुओं पर वर्ष 1999-2000 में आलोचना प्रधान नामोर सिंह के साथ विचार विमर्श चलता रहा है। जनसत्ता, आलोचना, सापेक्ष, साहित्य अमृत पत्रिकाओं में यह क्रम जारी रहा। इस विनिमय का कुछ उल्लेख यहाँ प्रासंगिक होगा। इस विनिमय के अंतिम चरण में मैंने आलोचना में प्रकाशनार्थ एक समापन टिप्पणी भेजी थी। संपादक परमानंद श्रीवास्तव ने लिखा, नोटेड कामा, आपका पत्र पहले ही मैंने नामोर जी को भेज दिया। इस बीच एक पत्र और टिप्पणी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की भी और अनुरोध उनसे यही किया है कि अब इनके साथ अपनी समापन जैसी टिप्पणी उसी स्तंभ में दे दें। इस बहस को यह अंतिम मान लेना भी जरूरी होगा ताकि दूसरी बहसें उभरें। नोट कामावन, यह कोई सामग्री छपी नहीं, आलोचना में प्रकाशित मेरी वह टिप्पणी इस प्रकार है। नोट कामा, कबीर विमर्श के क्रम में आलोचना सहस्राब्दी अंक 2 में आपने मेरा पत्र और टिप्पणी अविकल रूप में प्रकाशित किए हैं और फिर उन पर नामोर जी की व्यवस्थित प्रतिक्रिया है, सौजन्य के लिए आभारी हूँ। लगता है इस प्रसंग को आप समेटना उचित होगा। इस विवेचन में विवाद की केंद्रीय पंक्ति है ताते हिंदू रहिए, इसे नामोर जी आधा हिंदू रहिए पाठ के रूप में स्वीकार करते हैं। हिंदी में कबीर ग्रंथावली के जो मुख्य संस्करण है उनकी दृष्टि से पाठ आधा आधा बटा है इस प्रकार। ताते हिंदू रहिए पाठ, पहला पारसनाथ तिवारी का संस्करण, दूसरा रामकुमार वर्मा का संस्करण, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ। आधा हिंदू रहिए पाठ, पहला माता प्रसाद गुप्त का संस्करण, जयदेव सिंह वासुदेव सिंह का संस्करण, तीसरा नागर पिचाणी सभा का संस्करण। नामर जी का कहना है कि आधा हिंदू रहिए में रहिए प्रयोग विधि का न होकर सामान्य वर्तमान का माना जाना चाहिए। इस प्रसंग में मेरा अनुरोध पिछले पत्र में था कि इस असामान्य अर्थ प्रक्रिया को स्वीकार करने के लिए किसी व्याकरण का मत अपेक्षित है या फिर किसी कवि प्रयोग को दिखाकर उसे सिद्ध करना होगा। नामोर जी ने इस विषय में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जिज्ञासा को अनदेखा कर दिया। यूं तो विधि और वर्तमान आदि एकमेक हो जाए तो फिर संसार में कोई समस्या ही न रह जाए। व्याकरण के बाद धर्मांतरण प्रसंग ले। नामोर जी ने पद कार्य करते हुए तो स्पष्ट मान्यता निर्धारित की। एक तो यह कि इस पद का वक्ता निर्विवाद रूप से स्वयं कबीर है। दूसरे, जो स्वयं मुसलमान चुलाहे हैं और अपने आप को मुसलमान चुलाहा मानते हैं। अब यदि सुन्नत का प्रसंग, जैसा नामोर जी कहते हैं, दो समान धर्मावलंबियों के बीच है, एक काजी और दूसरे मुसलमान चुलाहा, तो फिर शक्ति अथवा स्नेह से पढ़कर सुन्नत करने की बात क्यों आती है? सामान्यतः किसी भी मुसलमान बच्चे की सुन्नत एक पवित्र क्रिया के रूप में प्रायः अबुधावस्था में हो जाती। काजी से इतनी लंबी चौड़ी बहस की वहाँ गुंजाइश क्या है? दूसरे, या कि कबीर यदि जन्मतः मुसलमान थे तो यह क्यों कहते हैं, जौरे खुदाई तुर्क मोही करता तो आप ही कटिक न जाई। यदि खुदा ने मुझे तुर्क बनाया होता तो। स्मरणीय है कि यह पद की यह पंक्ति प्राय सभी संस्करणों में है। यों व्याकरण के एक तथा धर्मांतरण के दो बिंदुओं पर नामोर जी की व्याख्या प्रतीक्षा रहेगी, जहाँ इस विवेचन को संपन्न माना जा सके। तिथि 16/10/2000। यहाँ स्मरणीय है कि आधा और तांते पाठ के चुनाव से विवेच्य पद में कबीर का मंतव्य परिवर्तित नहीं होता। पंक्ति यदि यूँ होगी, अर्ध शरीरी नारी न छूटे आधा हिंदू रहिए, तभी कबीर का व्यक्तिगत अर्थ होगा कि धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को आधा हिंदू तो फिर भी रहना है, क्योंकि स्त्री स्तांगनी है और उसकी सुन्नत हो ही नहीं सकती। पंक्ति में अब अर्ध शरीरी और आधा हिंदू प्रयोगों की समतौल बनावट विशेष रूप से ध्यातव्य है। इस संदर्भ में प्रधान संपादक नामोर सिंह की प्रतिक्रिया अभी तक प्रतीक्षित है। आपने मूल्यांकन का समय समय पर स्वतः मूल्यांकन करते चलना किसी भी जीवंत जागृत साहित्य का नित्य लक्षण है। कबीर की परख तो सदैव से कठिन रही है। जाति, जन्म, भाषा, रूप, पाठ, अंतर की विविध समस्याएं वहाँ बराबर उठती रहती हैं। उन्हें सुलझाते हुए कबीर पर पुनर्विचार हमारी आलोचना प्रक्रिया के सर्वथा योग्य निमंत्रण है। समस्या वही पुरानी है, कविता तक पहुँचने की। तिलस्म को खोलने की कुंजी तिलस्म के भीतर रखी होती है। कविता तक पहुँचने की कुंजी भी कविता के भीतर ही है। कबीर का घर शिखर पर है, जहाँ सिल हली गैल, पाँव न टिके पिपिलका, लोग न लादे बैल। कहना न होगा यहाँ पहुँचने के लिए पैदल यात्रा ही काम है, मिथ्या ज्ञान लदे बैल नीचे छोड़ देने होंगे। पुनश्च ताते हिंदू रही पाठ प्रसंग। विनांत एम कैलेवर्त के कबीर पाठ विषय कार्य का महत्व कुछ वैसा ही है जैसा कि रामकथा के विषय में कामिल बुलगे का। यह भी संयोग है कि दोनों मूलतः यूरोप में बेल्जियम क्षेत्र के निवासी हैं। 1991 में कैलेवर्त ने अपना कबीर पदों का चयन निर्गुण कवियों के लिए एक बृहद संकलन में प्रस्तुत किया, पूरी तरह परशनाथ तिवारी के संस्करण पर आधारित। एक दशक बाद 2000 में उनका विशाल अध्ययन ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, उक्त द मिलेनियम कबीर वाणी। इस ग्रंथ में उन्होंने विविध पाठ परंपराओं में प्राप्त कबीर पदों का अलग अलग पाठ दिया है। आरंभ में एक अनुक्रमणिका है, जिसमें शोधकर्ता ने प्रत्येक पद की प्रथम पंक्ति देकर निर्देश किया है कि उसकी प्रामाणिक संभाव्यता के बारे में। निर्देश की तीन कोटियाँ, सर्वाधिक संभाव्य पाठ, उससे कम, उससे भी कम। इस अनुक्रमणिका में ताते हिंदू रहिए पंक्ति वाले पद को उन्होंने सर्वाधिक संभाव्य पाठ की कोटि में रखा है। ग्रंथ की लंबी भूमिका में कैलेवर्त ने कबीर की विविध पांडुलिपियों, पाठ परंपराओं और प्रामाणिक संस्करणों की समीक्षा की है। यहाँ उन्होंने फिर पारसनाथ तिवारी की कबीर ग्रंथावली के पाठ की सर्वाधिक आशंसा की। नोटकामा, तिवारी का अग्रणी कार्य अकेला महान प्रशंसा और सम्मान का अधिकारी है। नोटकामा, इस संपादन कार्य का ही संख्या 178 का पद है, जिसमें यह पंक्ति आती है, ताते हिंदू रहिए इस पाठ की प्रामाणिकता पर पाठक अब स्वयं विचार कर सकते हैं।